श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। घट घट में विराजमान कण कण में व्याप्त प्रभु पिता परमात्मा का ध्यान करते हुए अनंत श्री विभूषित श्री गुरुदेव महाराज जी ने गुरबाणी में हमारे को हमारा समय हर एक समय हम प्रभु का चिंतन कैसे कर सकें, हम सभ्य समय की सफलता कैसे कर सकें, इसके लिए गुरु महाराज जी ने हमारे को दिनों के द्वारा भी उपदेश दिया, तिथियों के द्वारा भी उपदेश दिया और महीने के द्वारा भी उपदेश दिया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तिथियों के द्वारा भी है, 15 तिथियों के द्वारा भी उपदेश है कि एक एक तिथि में कैसा चिंतन करना चाहिए और इसी प्रकार दिनों के द्वारा भी है, 8 दिन में कैसा चिंतन करना चाहिए। उसी प्रकार महीनों में गुरु महाराज जी ने 12 महीने हमारे को चिंतन कैसा करना चाहिए, हर एक महीने में किस प्रकार का चिंतन करना चाहिए, ऐसा सदुपदेश दिया है गुरबाणी में। इसको चिंतन करने से हम अपने जीवन में घटा सकते हैं। उपदेश सर्वत्र सबके लिए होता है, केवल एक के लिए नहीं होता है। उपदेश चौमरना को समझा ऐसा लिखा है कि जो उपदेश होता है महापुरुषों का, गुरबाणी का, वेद का जो भी सिद्धांत है वो सबके लिए है, सार्वजनिक है, सर्वजनीन के लिए वो संविधान जैसा है। तो जो उपदेश देते हैं गुरु लोग देते हैं वो सबके लिए देते हैं, सबके चिंतन के लिए देते हैं। अब चिंतन की धारा उसका अनुसरण करना पड़ता है कि चिंतन की धारा कैसी बताई है महापुरुषों ने। हमारे जीवन में जब कोई साधक है, जिज्ञासु है, तो उसके जीवन की जब जिज्ञासा के द्वारा अपने जीवन में चिंतन करता है साधक, तो उसके जीवन में उसकी उस जिज्ञासा की पूर्ति के पहले पहले कई जीवन में पड़ाव आते हैं, क्योंकि साधन की कोटि है उसकी, तो उसको उसकी साधन की कोटि में ये उपदेश है जो 12 महीने हैं। ये मान लीजिए हमारी साधना की कोटि में हमारे 12 पड़ाव हैं, मंजिल हमारी, जब हम मंजिल पर पहुंचना है तो बीच में, जैसे हम यात्रा जाते हैं तो बीच बीच में पड़ाव करते हैं, उसी प्रकार हमारी जो मंजिल है, जो यात्रा की समाप्ति है और जिज्ञासा की पूर्ति पर होगी, ये बीच में हमारी अवस्थाएँ हैं, जो उसी का ही उपदेश है मानो जे 12 महीनों के द्वारा। बाहर का तो हम जानते ही हैं, लेकिन ये जो उपदेश होता है बाहर के साथ साथ अंदर की अवस्था का भी संकेत करता है। जो 12 महीने 12 माह जो उच्चारण किए हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने, यही उच्चारण किए हैं, अमृतसर की धरती में ही उच्चारण किए हैं, दरबार साहब के अंदर ही उच्चारण किए हैं, वहाँ बैठ करके अमृतसर की धरती पर ही महाराज जी ने ये उपदेश दिया है। जो दरबार साहब के पास में मंजी साहिब है वहाँ बैठ करके गुरु जी ने जे 12 माह उच्चारण किए, विनती की थी गुरु शिष्यों ने कि हम 12 महीने में कैसे अपना जीवन निर्वाह करें, आप हमारे को ऐसा कोई सदुपदेश दीजिए जिसके द्वारा हम हरेक महीने में इसका तात्पर्य समझ करके अपने जीवन को उसके अनुसार ढाल सकें, निर्वाह कर सकें। तो इस प्रकार महाराज जी ने, और बाहर की व्यवस्था तो आप जानते हैं ज्योतिष के अनुसार कि सूर्य भगवान जो उनका चक्र है जो भ्रमण करते हैं, एक साल में 12 महीनों में एक साल में एक राशि पर एक महीना रहते हैं उनका जो चक्र चल रहा है। तो सूर्य भगवान राशि को बदलते हैं आज संक्रांति के दिन, एक राशि को छोड़ करके दूसरी राशि में उनका रथ प्रवेश करता है। तो ये जो उतना समय होता है जो सूर्य भगवान एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसके बीच में जो समय होता है उसी को संक्रांति बोलते हैं। संक्रमण होता है, तब्दीली होती है, परिवर्तन होता है, उतने समय में ही उसका महात्म है। तो सूर्य भगवान जब राशि बदलते हैं भाव परिवर्तन होता है, तो जब सूर्य भगवान परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन से हमने क्या लेना, यही तो महीने का तात्पर्य समझने में है कि सूर्य भगवान जब एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, भाव तब्दील होते हैं, परिवर्तन होता है, तो हम पीछे जो पीछे वाला महीना है उसमें हमने विचार करना है, चिंतन करना है कि पीछे वाले महीने में हमने जो वैशाख का महीना अभी व्यतीत हुआ है उसमें हमने क्या चिंतन किया है। आज हम ज्येष्ठ में प्रवेश कर रहे हैं, तो जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो भाव परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। परिवर्तन को ही संक्रांति बोलते हैं ना, तब्दीली को संक्रांति बोलते हैं। तो हम ही तो दूसरे ज्येष्ठ महीने में प्रवेश कर रहे हैं, दूसरी राशि में हम ही तो रहेंगे ना, सूर्य भगवान की शरण में रहेंगे ना एक महीना दूसरी राशि में। तो जब हम ये विचार करेंगे कि हमारे जीवन में तब्दीली हो रही है कि नहीं, तभी हमारा ये सत्संग जो है हमारे को इसका लाभ होगा। ये पता वैसे नहीं चलता, संगति से पता चलता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, बिनु हर कृपा मिल ही नहीं संता। ये तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि बिना हरि की कृपा से संतों का मिलाप नहीं होता, सत्संग नहीं होता, और जब होता है तो उसका कितना बड़ा महात्म है कि सत्संगति संस्कृति कर अंता। संस्कृति बोलते हैं चलते रहना, जो भ्रमण हो रहा है ना, आना जाना आवागमन जो हो रहा है उसको संस्कृति कहते हैं, चलना, जो हमारी जीवन यात्रा चल रही है ना, कई जन्मों से चल रही है, उसका अंत हो जाता है यदि संगति मिल जाए, संतों का मिलाप हो जाए, तो फिर हमारे जीवन यात्रा का जो आवागमन का चक्र है उसका अंत हो जाता है, निवारण हो जाता है। इतना बड़ा महात्म है, लेकिन कहाँ, सत्संगति में बैठ करके जब चिंतन करेंगे तब पता चलता है कि ये जो आवागमन का चक्र है इसका अंत कब होगा। चाहता तो हर कोई है, सबकी चाहना है कि नहीं, सबकी चाहना है कि मैं सुख से बैठ जाऊं, मेरे को सुख प्राप्त हो जाए। जो भी कोई दौड़ रहा है किस लिए दौड़ रहा है, सुख के लिए। और हमारी जो सुख की चाहना है, सुख की इच्छा है, उसकी निवृत्ति कब होगी, जब हमारे को पूर्ण सुख मिलेगा, तब तक हमारी दौड़ की समाप्ति होने वाली नहीं है। हमारी की सबकी, जितने भी प्राणी मात्र हैं, भले वो पशु हैं, भले पक्षी हैं, भले कोई भी है, सबकी एक ही चाहना है कि पूर्ण सुख प्राप्त हो, जो कभी जाए ना, इसलिए उसकी दौड़ वहाँ तक है। जब उसको सुख मिल जाएगा पूर्ण रूपेण, तब उसकी दौड़ समाप्त हो जाएगी। तो वो जो सुख है भाव, वहाँ पर जाकर के हमारी यात्रा की समाप्ति है, और ये जिज्ञासा की पूर्ति है। तत्व ज्ञान होना, आत्म ज्ञान होना ही जिज्ञासा की पूर्ति है। तो जब हम उस दौड़ तक जाना चाहते हैं, उस दौड़ की समाप्ति चाहते हैं, तो ये कहाँ से पता चलता है? सदग्रंथों से अथवा महापुरुषों से? सदग्रंथ कह रहे हैं कि जब आपको संतों का मिलाप होता है हरि की कृपा से, इसका मतलब क्या हुआ? सत्संगति में एक तो हरि की कृपा चाहिए ईश्वर की, और उसके बाद गुरु की कृपा चाहिए। संत का अर्थ है गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा। चार कृपा होती हैं, आपने कई बार पहले भी सुना है, ईश्वर कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, शास्त्र कृपा होती है, और चौथी होती है आत्म कृपा। तो हमारे अहोभाग्य हैं इस पावन स्थली में कि हमारे ऊपर ईश्वर कृपा हुई, तभी ये हमारे को ऐसा पुण्य स्थल प्राप्त हुआ। और कितनी कृपा की है गुरु महाराज जी ने कि गुरु लोगों ने यहाँ बैठ करके हमारा मार्गदर्शन किया। गुरु कृपा भी है हमारे ऊपर, ईश्वर कृपा भी है, शास्त्र कृपा भी है, क्योंकि इस पावन स्थली में जब से ये निर्माण हुआ तब से शास्त्र की चर्चा चल रही है। तो तीनों कृपा है हमारे पास। चौथी कृपा जो है आत्म कृपा है, वो हमने देखना कि हमारे अंदर है कि नहीं। यदि हमारे जीवन में तब्दीली नहीं आई, हम जैसे थे वैसे ही हैं, तो इसका मतलब हमने अपने ऊपर अपनी कृपा अभी तक नहीं की। तीन कृपा तो हमारे पास हैं, चौथी कृपा यदि हमारा जीवन जैसा था 20 50 30 साल से वैसा ही है, जितने दुखी हम आज से 30 साल पहले से उतने दुखी हैं या उससे ज़्यादा दुखी हैं, तो इसका मतलब तीन कृपा होने के बावजूद भी हमने अपनी कृपा हमारे पर नहीं है। अपना स्वार्थ जो पुरुषार्थ है वही है ना, पुरुषार्थ करेंगे, उद्यम करेंगे, तभी हमारे को ये तीन कृपा जो फलीभूत होगी। तीन कृपा होने के फलस्वरूप भी यदि चौथी कृपा नहीं है तो लाभ नहीं मिलता। इसलिए जब तुलसीदास महाराज जी ने यहाँ पर मोहर लगाई है कि आपकी जो संस्कृति है, आपका जो आवागमन का चक्र है, उसका अंत हो जाएगा, इसका मतलब अंत असंभव नहीं है, अंत हो सकता है, आवागमन जो है मिट सकता है हमारा, लेकिन कृपा जब होती है गुरुओं की, संतों की, तो सभी कृपा हमारे पास हैं। अब हमने अपनी कृपा भाव उद्यम पुरुषार्थ हमने करना है। तो आज जब संक्रांति का चिंतन करते हैं तो इसका मतलब है कि जब सूर्य भगवान दूसरी राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, भाव जो नियम है, जो नियति है, प्रकृति है, प्रकृति में कुछ परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो समय है समय अनुसार तो परिवर्तन होता है, समय तो बताता है परिवर्तन हो रहा है, समय बदल जाना ही तो परिवर्तन है हमारी आंखों के सामने, और कैसे हम अनुभव नहीं कर सकते ना। जो समय बदलता वही उसको देखते हैं हम कि परिवर्तन हो गया, रात्रि थी अभी दिन हो गया, ये हमारी आंखों के सामने परिवर्तन है। किसमें? प्रकृति में। तो इस बाहर वाली प्रकृति में परिवर्तन तो हमारे को दिख रहा है, जो बाहर वाली है स्थूल प्रवृत्ति, लेकिन भीतर वाली प्रवृत्ति में क्या अंतर पड़ रहा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है। जैसे बाहर की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, जो हमारी आंखों का विषय है, जिसको जिसमें हमारा ममत्व है, ममता है जिसमें, इसी प्रकार जिसमें हमारा अहम है उसमें भी परिवर्तन होता है। क्योंकि अहम कहाँ होता है? अहम होता है शरीर में, इंद्रियों में, प्राणों में, अंतः जो हमारा ये है ना, इसमें अहम होता है, हमारा अहंता होती है, बाहर के पदार्थों में ममता होती है। तो बाहर के पदार्थों में प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, इसी प्रकार हमारे शरीर में, इंद्रियों में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? भाव जैसे हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय पहले थे अभी वैसे नहीं है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो इसमें परिवर्तन होता जा रहा है कि नहीं? इस परिवर्तन को हम देखते हुए भी चिंतन नहीं करते कि जब इसमें परिवर्तन हो रहा है तो एक दिन परिवर्तन होते होते इस परिवर्तन का अंत हो जाएगा। तो जब इसका परिवर्तन हो करके ही अंत होता है तो हमारा जो चिंतन है उस चिंतन के द्वारा हमारी वृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं होता। मतलब ये है कि जब परिवर्तन होगा, भाव हम चलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। ये यात्रा शरीर की यात्रा चल रही है तो अंत इसका कहाँ है? शरीर यात्रा का शमशान में अंत तो है ना इसका। ये शरीर रूपी यात्रा चल रही है तो शमशान में जा करके इसकी यात्रा की समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जो मन की यात्रा है उसकी भी समाप्ति कहाँ होनी है ना। मन भी तो दौड़ रहा है, चल रहा है ना, उसकी समाप्ति कहाँ होगी? उसकी समाप्ति तो अपने स्वरूप में जब समाहित होगा तभी उसकी समाप्ति होगी। अपने स्वरूप को प्राप्त करना ही उसकी समाप्ति है। इस मन को कोई खोज हो भाई, तन तन छूटे मन कहाँ समाई। इसका कहते चिंतन करो, विचार करो, ये मन का विचार करो कि मन जब शरीर छूट जाता तन छूटे मन कहाँ समाई। जब शरीर छूट जाता है बाहर वाला तो इसका तो आप चिंतन कर रहे हैं कि इसकी समाप्ति होगी, तन कहाँ समाई। तन की समाहित कहाँ होगा, तन कहाँ जाएगा, तन के बाद मन कहाँ जाएगा। मन से अंतःकरण भी लेते हैं, मन से जीवात्मा भी लेते हैं, केवल मन से संकल्प विकल्प वृत्ति मन ऐसा तो है। संकल्प विकल्प की जो वृत्ति है उसको वैसे मन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महाराज जी कह रहे हैं कि तन छूटे मन कहाँ समाई, इस मन शब्द से आप अंतःकरण में विशिष्ट जीव भी ले सकते हैं, वही लेंगे। अंतःकरण विशिष्ट जीव जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, भाव सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर को तो आपने देख लिया, सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है? जब जे बड़ा शरीर छूट जाता है तन छूटे मन कहाँ समाई, तो सूक्ष्म शरीर कहाँ जाता है। गहरा चिंतन है ना उसमें कि सूक्ष्म शरीर की समाप्ति नहीं हुई। सूक्ष्म शरीर तो ज्ञान के पश्चात ही छूटता है, तब तक सूक्ष्म शरीर बना रहता है, आवागमन में उसी में ही है, संस्कृति भी उसी में ही है। इस शरीर में संस्कृति नहीं है, ये शरीर कहीं से आता जाता नहीं है। जो बाहर वाला शरीर है ये आवागमन थोड़ी करता है। जो आवागमन मानते हैं हम, स्वर्ग नरक मानते हैं, लोकांतर में आना जाना हम मानते हैं, ये हमारा ये शरीर नहीं करता, सूक्ष्म शरीर करता है। वो जो आवागमन वाली संस्कृति है उसका अंत कहते हैं सुक्ति जाति, इसका नहीं कहते हैं। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता कि हो जाता है, बिना प्रयास होई भव भंगा, ऐसा भी कहते हैं। बिना प्रयास होई भव भंगा, भाव कहते हैं संसार में आना जाना, उसका भंग हो जाता है, छेदन हो जाता है, बिना प्रयास होई भव भंगा। लेकिन जब सतसंगति मिल जाती है तो बिना प्रयास का मतलब ये नहीं कि आप सत्संग में आ गए, प्रवचन सुन लिए, बैठ के माथा टेक लिया तो बिना प्रयास। बहुत लोग कह देते हैं कि बिना प्रयास जब दर्शन हो गया संतों का तो महाराज हमारा तो हम तो छूट ही जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है, बिना उद्यम के कभी कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई भी दूसरा आपको मुक्ति नहीं दे सकता। सत्संग में आने से क्या होता है, आपका मार्गदर्शन होता है, लेकिन स्वयं ही आपको उद्यम तो करना ही पड़ेगा। बिना प्रयास का अर्थ है कि थोड़े प्रयास से होती है, प्रयास तो करना ही पड़ता है। अकेले चिंतन करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने से फिर कहीं हमारे को रास्ता मिलेगा। यहाँ आने से रास्ता दिख जाता है तो फिर उस रास्ते में हम चलना शुरू कर देते हैं, वहाँ रास्ता ढूंढना पड़ता है पहले। तो रास्ता मिल जाएगा तो बिना प्रयास से संस्कृति का अंत हो सकता है, परंतु चिंतन करना पड़ेगा। तो चिंतन हम करते हैं किसके द्वारा करेंगे चिंतन? जो हमारे को महापुरुष सदग्रंथ बताते हैं उसके द्वारा, उसके अनुसरण करके हम चिंतन करेंगे जब, तब हमारे जीवन में तब्दीली आएगी। संक्रांति का आज पर्व है, इसलिए एक अभी पीछे वैशाख का महीना व्यतीत हुआ, आज से ज्येष्ठ प्रारंभ हो रहा है। बहुत ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे ना, समय नहीं है। केवल जो हम हमारे को उपदेश दिया उसका एक बार श्रवण कर लेते हैं कि जेठ जो महीना है उसके द्वारा हमारे को उपदेश क्या देते हैं। तो जेठ जोड़ा लोड़ी है जिस अग्गे सब नवानी, हर सज्जन दावन लग्या किसी ने देई बन, माणक मोती नाम प्रभ उन लगे ना ही सन, रंग सभे नारायण जेते मन भावन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन, जो प्रभ किते अपने से ही कहिए धन, अपन लिया जेमले विचर प्योरो वन, साधु संग प्राप्ति नानक रंग माणन, हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके भाग मथन। ये है महीने का उपदेश, जेठ जुड़ंदा लोड़ी है। अब इसकी व्याख्या में तो बहुत समय लगता है, पाठ करने से भी आधी व्याख्या समझ में आ जाती है कि ज्येष्ठ के महीने में गुरु महाराज जी कहते हैं कि संसार में हम लोग नाता जोड़ते हैं बहुत लोगों के साथ, हमारे नाते रिश्ते हैं ना संसार में, किसी का भाई के साथ, किसी का माता के, सबके साथ है ना। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि नाता किसके साथ जोड़ना है आपने, रिश्ता आपका, संबंध आपका किसके साथ, संसार के साथ संबंध रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बांधना पड़ेगा, बंधन पड़ जाएगा, बंधन से छूट नहीं पाओगे। जब तक संसार से संबंध है तो बंधन छूट नहीं सकता। एक ऐसी है कोई शक्ति कि उसके साथ जो संबंध जोड़ लेता है उसको कभी बंधन नहीं पड़ता, उसके आगे ही केवल झुकना चाहिए। झुकने का मतलब विनम्र होकर के उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। जेठ जुड़ंदा लोड़िए, जुड़ंदा मतलब जुड़ना चाहिए, संबंध जोड़ना चाहिए, लोड़िए का अर्थ चाहिए। किसके साथ? जिस अग्गे सब निवन, ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं आपको मिलेगा कि जिसको सारा संसार नतमस्तक होता हो, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ व्यक्ति हर किसी के नतमस्तक होते हैं, डरते हैं उससे, अथवा उसके संबंध इसलिए जोड़ते हैं कि ये बड़ा है, इसलिए जोड़ते हैं ना हम संबंध, छोटे से हम कहाँ जोड़ते। हर एक आदमी की कोशिश रहती कि बड़े से संबंध, क्योंकि उसका भय है लोगों में, उससे लोग उसका सत्कार करते हैं, भय भी होता है कईयों से, कईयों का सत्कार करते हैं। जो दबंग लोग होते हैं उनसे लोग डरते हैं, जो महात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनसे लोग वैसे उनका सत्कार करते हैं, उनसे उनको मार्गदर्शन मिलता है। तो कुछ ना कुछ लोग किसी के आगे नतमस्तक होते हैं, लेकिन पूरा संसार किसी के आगे नतमस्तक नहीं होता। या तो प्रभु के आगे होता है, या जो प्रभु के महापुरुष तत्व नेता लोग होते हैं, जो प्रभु के साथ अभेद हो जाते हैं, उनसे आगे नतमस्तक होता है सारा संसार। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप उसके आगे नतमस्तक हो, उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिस अग्गे सब निवन। कोई विद्या शक्ति वाला हो, कोई धन बल वाला हो, किसी प्रकार की भी शक्ति वाला हो, सारी शक्ति वाले जिसके आगे नतमस्तक होते हैं उसके साथ संबंध जोड़ना चाहिए। तो इसका मतलब संसार के संबंध झूठे हैं, मिथ्या है, इनको छोड़ दो कहते हैं। किसी ही धड़ा किया मित्र नाल सुख पाई, किसी ही धड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, ऐसा बोलते हैं गुरु महाराज। किसी ने मित्र के साथ धड़ा किया, किसी ने भाई के साथ किया, किसी ने कुड़म के साथ किया, किसी ने जवाई के साथ किया, ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कहते हैं। हमारा धड़ा हर रहे असमाई, हमारा धड़ा हरि के साथ है और किसी के साथ नहीं है। हम किसी को धड़ा नहीं मानते, किसी के पक्ष में, किसी की पार्टी में हम नहीं हैं। हमारा पक्ष, हमारा धड़ा कौन है? हरि, जो सर्वत्र व्यापक है, जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक होता है, उसके साथ हमारा संबंध है। तो उसके साथ कहते हैं संबंध जोड़ना चाहिए, जैसे अग्गे सब निवान। क्यों जोड़ना चाहिए उसके साथ संबंध? मैंने अभी भी आपको कहा था कि संसार के किसी नेता से, किसी बड़े लोगों से संबंध जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो हमारे को फिर भी फंसना ही पड़ता है। छोटी मोटी कैद से हमारे को छुड़ा सकता है, छोटे मोटे जब हम बंधन में पड़ते हैं अथवा किसी विपत्ति में होते हैं तो उस विपत्ति का निवारण तो कर सकता है, धन से संबंध होगा, राजनीति से होगा, किसी से संबंध होता है तो छोटी छोटी विपत्ति से हमारे को निकाल सकता है व्यवहार में। लेकिन जो असली बंधन है ना, जो जम का बंधन है, उसमें से निकालने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए कहते हैं कि हर सज्जन दावण लग्या। जो हरि रूप सज्जन है ना, सज्जन तो संसार में बहुत हैं, हमारे मित्र सज्जन बहुत हैं, लेकिन हरि जैसा सज्जन नहीं है। वो कैसा सज्जन है, उसके लिए एक पंक्ति आपने श्रवण की है, सज्जन सच्चा पात साह सिरसा हांदे साहु। कैसा सज्जन है वो? सच्चा सज्जन है, झूठा नहीं। संसार के मित्र झूठे सज्जन झूठे हैं। जब तक आपके पास कुछ दिखता है, उनको दिखाई पड़ता है, तभी संबंध रखते हैं, लेकिन वो सच्चा सज्जन है, झूठा नहीं है। उसकी उसका स्वरूप क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसकी बड़ियाई क्या है? वो है सिरसा हांदे साहु। वो ऐसा सज्जन नहीं है। संसार के जो बादशाह माने जाते हैं, चक्रवर्ती माने जाते हैं, उनका भी वो शाहूकार है। क्यों? वो सारे उससे मांगते हैं। ये भी आपने श्रवण किया है कि नहीं? सबको दाता राम जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। कोई भी बात का विचार करेंगे, चिंतन से पता चलता है कि वो जितना संसार के लोग हैं भिखारी हैं, तो फिर आप शाहूकार को मानते हैं। संसार में लोगों को हम शाहूकार मानते हैं, तभी तो उनके पास जाते हैं। तो कहते हैं वो ऐसा शाहूकार नहीं है, संसार के शाहूकार जैसा नहीं है, ये तो उसी से मांगते हैं सब, उससे मांग के आपको देते हैं। वो ऐसा नहीं है। सिरसा हां दय साहू, शाहूकार के ऊपर वो शाहूकार है, सच्चा शाहूकार है, झूठा नहीं। संसार के धन का शाहूकार नहीं है वो, संसार की संपत्ति का शाहूकार नहीं है। उसके साथ सज्जन सच्चा पातशाह हो, सिरसा हांदे साहू कैसा है? जिस पास बैठे हैं सो ही है। जिसके केवल पास बैठने से ही आदमी प्रफुल्लित हो जाता है, शुभायमान हो जाता है, उसमें चमक आ जाती है, उसका जस बढ़ जाता है, जिसके पास बैठने से। ऐसा चाहूकार जिस पास बैठे हैं सो ही है, सपना दावे साहब, ऐसा सज्जन है। तो कहते हैं कि उस सज्जन के दामन के साथ जुड़ जाओ आप। दामन कहते हैं ना आसरा, पल्लू पकड़ना। हर सज्जन दामन लग गया, वो जो हरि रूप सज्जन है उसके दामन के साथ जो लग जाता है, जो उसका पल्लू पकड़ लेता है, उसको क्या होता है? हर सज्जन दावण लग गया, किसे ना दे बन। वो जम जम किसी को बांध के लेके जाते हैं, अथवा संसार में किसी को कैद होती है, कुछ जेल होती है, तो उसको बांध के लेकर के जाते हैं। जो उस हरि रूप सज्जन का पल्लू पकड़ लेता है, वो फिर कैसा सज्जन है? वो उस व्यक्ति को जो उसके साथ, उसके पल्लू के साथ लगा है, उसको किसी के आगे बांध करके नहीं जाने देता। वो कोई भी उसको बांध करके नहीं ले जा सकता। संसार की बात नहीं, ऊपर की जम की बात है। जम डंडा गल संगल पड़िया, भाग गए से पंच जना। आप जिन पांचों के साथ आपकी आसक्ति है ना, तो जब जम का डंडा पकड़ता है, जम आकर के संगल आपको संगल से बांध करके लेके जाता है ना, हुक्म रूपी संगल से, तो भाग गए से पंच जना। जो पांच आपको, पांचों के साथ आसक्ति थी ना आपकी, वही भाग जाते हैं, उस समय कोई नहीं रहता। तो जो ऐसे सज्जन के पल्लू में लग जाता है, आश्रय पकड़ लेता है, उसको किसी के आगे नहीं जाने देता, चलाता नहीं है बांध के। उसकी बात है, उसके दामन के साथ जुड़ो। हर सज्जन दामन लग गया, किसे ना देई बन। माणक मोती नाम प्रभ उन लगे ना ही सन। जो उसका नाम है प्रभु का, माणक मोती की तरह इतना अमूल्य है, जस श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी जो साधन है, ये माणक मोती की तरह है। तो माणक मोती नाम, उसका जो नाम है वो माणक और मोतियों से भी ज़्यादा अमूल्य है। माणक मोती नाम प्रभ, कैसा उसका नाम अमूल्य क्यों है? संसार के हीरे मोती जवाहरात अमूल्य भले हैं, लेकिन इनके ऊपर एक भय है चोर का, चोर ले जाता है तो वो कैसा उसका हरिरूपी, जो हरिरूपी सज्जन उसका नाम कैसा है, उन्हें लगे ना ही सन, उसको संधि नहीं लगती, सेंध नहीं लगती, उसको कोई चुरा नहीं सकता, लगे ना ही सन। रंग सभे नारायण, जितने आपको संसार में जितने आनंद हैं, यहाँ पर तो वेदांत है, रंग का अर्थ बाहर के जो कपड़े का अथवा शरीर का, ये अर्थ रंग का अर्थ यहाँ पर ये नहीं। जितने भी आनंद विषयों में आप आ रहे हैं ना, किसी भी विषय का जो आप आनंद लेते हैं, रस लेते हैं, रंग सभी जितने रंग मतलब आनंद संसार में हैं नारायण, वो किसी का रस मत समझिए कि वो जो रंग भाव जो आनंद है वो उस वस्तु व्यक्ति अवस्था में है, ऐसा मत समझिए आप। वो जितने आपको आनंद अलग अलग है ना, आनंद तो आपको जो भी वस्तु पकड़ेंगे उसका अलग अलग आपको आनंद है, इसलिए जहाँ पर बहुवचन कहते हैं रंग सभे, जितने सभी रंग मतलब आनंद हैं, अलग अलग अनेकता में भासने वाले जितने आनंद हैं नारायण, वो नारायण के हैं, हा प्रभु पिता परमात्मा ब्रह्म का ही आनंद है, उसके आनंद से ही सारा संसार आनंदित हो रहा है। जेते मन भावन, जहाँ पर देखिए कितना बड़ा चिंतन है, जितने भी आपके मन को अच्छे लगने वाले आनंद हैं, तो संसार में जितने विषय के रास हैं, हमारे मन का ही तो संकल्प है, मन ही तो कहता है इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। जेते मन भावन, जितने आपके मन को अच्छे लगने वाले आनंद है ना, अलग अलग विषयों के, सभी नारायण, सभी नारायण के आनंद का अंश मात्र है, उसी के द्वारा ये संसार आनंदित हो रहा। रंग सभे नारायण जेते मन भावन, जो हर लोड़े सो करे सोई जी करान, हरिरूप सज्जन जो भी चाहता है वो ही करता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि एक हरि ही ऐसा है जो स्वतंत्र है, उसकी सत्ता ऐसी है कि स्वतंत्र सत्ता है, परतंत्र नहीं है। जो हर लोड़े, लोड़े मतलब जो चाहता है, हरि जो चाहता है, भाव उसकी सत्ता हमेशा ही कायम रहती है। संसार की सत्ता बदलती रहती है, व्यवहारिक सत्ता, संसार की सत्ता मतलब व्यवहारिक सत्ता बदलती रहती है, खटपट मठ की सत्ता बदलती रहती है, शरीर की सत्ता बदलती रहती है, उसकी सत्ता जो हर लोड़े सो करे, जो चाहता है बियो पूछ न मसलत करे, जो कुछ करे सो आप ही करे। बियो पूछ, बियो का अर्थ था दूसरा, दूसरे से पूछ करके कोई काम नहीं करता, हमारे को तो सलाह लेनी पड़ती है दूसरे को, स्वतंत्र हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो कैसा है, बियो पूछ न मसलत करे, किसी से पूछ के सलाह नहीं करता, जो कुछ करे सो आप ही करे, जो करता है स्वयं करता, स्वतंत्र है ना, स्वतंत्र करता है। तो जो हर लोड़े सो करे सोई जी ग्रन, वो जो चाहता वो करता है और जो कराना चाहता है वो लोग करते हैं। सोई जी है, जो संसार के जीव हैं वो भी उसी के अनुसार करते हैं। भाव किसी की स्वतंत्रता नहीं है, किसमें आप कहेंगे कि संसार के लोग तो, हम तो अपने आप काम करते हैं, उसके कहने से थोड़ी करते हैं, कोई परमात्मा थोड़ी हमारे को कहने आता है। बात तो ठीक है, आपको काम करने में स्वतंत्रता है, कोई आप कर्म करते हैं उसमें आप स्वतंत्र हैं, लेकिन मां फलेषु कदाचना इसमें तो नहीं ना। वैसे तो ठीक है, कर्म मन्ने वाधिकारस्ते, कर्म में आप स्वतंत्र हैं, मां फलेषु कदाचना, लेकिन फल में नहीं है आप, फल में स्वतंत्र नहीं है आप। यहां पर केवल करने की बात नहीं कह रहे, हरि जो चाहता है वो करता है, जो कराना चाहता है वो लोग करते हैं, भाव फल वो देता है, फल आपके हाथ में नहीं है। सोई जी कर्म, वैसा ही लोग फल भोगते हैं, फल उसके हाथ में है। सोई जी कर्म, जो प्राप्त कीते अपने से ही कहिए धन, जिनको प्रभु ने अपना लिया, अपने बना लिया, वो धन्य हो जाते हैं। सोई जी करान सोई कहिए धन, आपन लिया जेवले बचड़ प्योर वन। यदि कहते हैं कि अपनी जो अहमता हमारे शरीर में है, ममता संसार में है, इसके वशीभूत हो करके यदि कोई उसको पाना चाहे, आपन लिया जे मिले, यदि किसी अपने उद्यम से उसको कोई ले सकता हो, उद्यम का मतलब इस संसार में असक्त होते हुए यदि कोई कहे कि मैं प्राप्त कर लूँ, जैसे मैं संसार का वैभव प्राप्त कर लेता हूँ अपने उद्यम से, भाव कर्म करके या उपासना करके मैं उसको प्राप्त कर लूँ। आपन लिया का मतलब क्या, हम कर्म से ही चाहते हैं ना कि मैं कर्म से उसको प्राप्त कर लूँ, जैसे मैं संसार की वैभव प्राप्त की है। तो आपन लिया जेमने बिछड़ के और वन, यदि कोई कर्म से उपासना के अपने बल से उसको प्राप्त कर सकता हो, तो कहते संसार के लोग रोते क्यों दिखाई दें, रो रहे हैं कि नहीं। कितना भी किसी के पास धन संपत्ति हो, लेकिन कभी आपने खुश नहीं उसको देखा, खुशी में नहीं देखा होगा आपने। जितने लोग आपको दिखाई पड़ेंगे ऊपर से बहुत देखेंगे भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन पूछिए किसी से तो एक नहीं हजार दो का आपको बताएगा। कहते यदि ऐसा हो तो फिर संसार के लोग उससे बिछड़ करके दुखी क्यों हो। तो ये कहते हैं कि आपन लिया जेमड़े बिछड़ प्योर वन, तो साधु संग प्राप्ते। प्रश्न यहां हुआ कि यदि अपने उद्यम से, अपनी धन शक्ति से, बल शक्ति से, विद्या शक्ति से नहीं मिल सकता, तो फिर वो मिलेगा कैसे, उसको हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो यहां पर साधन बतलाया उसकी प्राप्ति का कि साधु संग प्राप्ते। वो साधु की, महात्मा की संगति से, गुरुओं की सन्निधि से प्राप्त होता है, वैसे नहीं होता है, अपने कर्म के द्वारा पुरुषार्थ से नहीं होता है। काम धर्म अर्थ जो है ना तीन प्रकार के, ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष रूपी पदार्थ प्राप्त नहीं होता है ऐसा, ना धन से, ना अर्थ से, ना काम से। काम चलने वाला नहीं है, संसार में तो चल सकता है, इसलिए कहते साधु संग प्राप्ते। उसकी प्राप्ति का एकाएक उपाय क्या है, साधु संगति। तो साधु संगति से प्राप्त क्या होता है, साधु संग प्राप्ति। जब आपको साधु महात्माओं की संगति प्राप्त हो जाती है, गुरुओं की सन्निधि मिल जाती है, साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणम। जो आ जाता है शरण में, संतों की शरण में आ जाता है, जो भी लोग आते हैं रंग माणम, वो कहते हैं असली जो आनंद है उसको मानते हैं, प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। असली जो रंग है उसका, रंग मतलब आनंद, जो स्वरूप रूपी आनंद है, निज आत्मा का जो आनंद है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का जो आनंद है, रंग का अर्थ आनंद है, उसका अनुभव करते हैं। मानना मतलब आनंद भव, उसका अनुभव करना, साक्षात कर लेते हैं, नानक रंग मनान। अंत में कहते हैं हर जेठ रंगीला तिस धनी। वो जो ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा, जिसका अभी हमने अवलोकन किया ना सज्जन सच्चा, सबसे बड़ा उत्कृष्ट है, ऐसा जो जेठ के महीने में कहते हैं, ऐसा जो धनी है, धनी मतलब स्वामी मालक प्रभु पिता परमात्मा, उसकी बात करते हैं। हरि रूप जो धनी, हरि रूप जो स्वामी है, मालक है, हर जेठ रंगीला तिस धनी, उसके लिए वो आनंद स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। रंगीला का अर्थ क्या हुआ, आत्म स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है। उसके लिए कौन, हरि रूप धनी, धनी मतलब मालक स्वामी, उसके लिए आनंद स्वरूप है। ज्येष्ठ के, ज्येष्ठ के महीने में कहते हर ज्येष्ठ रंगीला तिस तिस धनी, किसके, जिसके भाग मथन, जहाँ पर निर्णय किया, फल बतलाया कि जिसके माथे के भाग अच्छे होते हैं उसके लिए, सबके लिए नहीं, सभी के लिए आ गया जहाँ, सभी नहीं आते ना, कितना संसार जा रहा आ रहा है, सबके बस की बात नहीं है। जिसके भाग मथाना, बिना भाग्य के तो मनुष्य जन्म ही प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, ये तो बड़े भाग्य से तो हमारे को मनुष्य शरीर ही मिला है। तो जो उसके साथ अभेदता है उसकी बात दूर की है, कितने बड़े भाग्य होंगे। भाग्यो देन बहु जन्म समर्जिते न, भाग्यो देन बहुत बड़े भाग्य के जब उदय होता है, बहुत जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं तब जे मिलती है ना साधु की संगति। तो इसमें जब आता है भाग्यो देन बहु जन्म समर्जिते न सत्संग, सत्संगतम ये कहते हैं कि सत्संगमम चलाभ्य पुरुषो यदा वही, जो सत्संगम है ये सत्संग का प्रवाह है, ये उसको फिर प्राप्त होता है जब उसके कई जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं। तो फिर अज्ञान कृत मोह मद अंधकार, जो अज्ञान के द्वारा किया हुआ ये मोह रूपी अंधकार है, अज्ञान कृत मोह मद अंधकार, ये जो है ना इसकी फिर समाप्ति होती है। ये प्राप्त हुआ हमारे को कैसे है, अज्ञान से, अज्ञान कृत मोह मद अंधकार नाशम विधाया ही कदो दैते विवेक। ये भागवत महापुराण का श्लोक है कि ये जो अज्ञान कृत मोह रूपी अंधकार है जिसने सारे संसार को ग्रसित कर रखा है, नाशम विधाया ही तदो तदा, यदा उसको सत्संग प्राप्त हुआ तदा नाशम, इसका नाश होता है। कैसे नाश होता है, तदा उदयते विवेक, जब उसको सत्संग प्राप्त हुआ तो सत्संग से उसको विवेक हुआ, तो विवेक से फिर क्या हुआ, इस मोह रूपी अंधकार का नाश हुआ। तो यहां पर कहते हर जेठ लीला दिस्तणी, जिसके भाग मथान, जिसके बड़े भाग्य हो गए हैं उसको प्राप्त होता है। आज के महीने में ये उपदेश हमारे को आदेश उपदेश किया, मार्गदर्शन किया, बहुत संक्षेप में चिंतन किया हमने। यदि इसका चिंतन विस्तार से करें तो बहुत समय लगेगा, एक एक पंक्ति में बड़ा बड़ा सिद्धांत है। तो ये हमारे जीवन यात्रा का एक पड़ाव है, अवस्था है, इसका हम चिंतन करें एक महीना। आपने संक्षेप से सुन लिया तो हर रोज इसका एक महीना चिंतन करना चाहिए, तभी हमारा दूसरे महीने में तब्दील होंगे ना हम, आगे वाले महीने में फिर तब्दीली आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। तो तब्दीली का साधन बतलाया हमारे को कि आप तब्दील हो सकते हो। तो इस महीने के बाद जब हम दूसरे महीने में प्रवेश करेंगे तो ये वाला जो उपदेश है हमारे जीवन में आना चाहिए, तभी हम दूसरे पड़ाव के लिए अग्रसर होंगे, प्रवेश होंगे। तो जो हमारा चिंतन चल रहा है दो चार मिनट अभी, उसका भी चिंतन कर लेते हैं। जो चिंतन हमारा चल रहा है वो चल रहा है ईशावास्य उपनिषद का, दो मंत्र हमने विचार किए, ईशावास्य मिदम सर्वम यत्किं जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मां वृद्धा कस्य स्विद्धन। इसका चिंतन किया, उसके बाद कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिदि विशेत सतम समा, ये इसका भी विचार किया। तो उसमें से कौन कौन सी बात हमने विचार की, एक तो ये कि हमारी सर्वत्र ईश्वर दृष्टि होनी चाहिए, ईश्वर दर्शन होना चाहिए सभी जगह हमारे को। और दूसरा, जब ईश्वर दृष्टि होती है तो भोग में त्याग आना चाहिए। और तीसरा, जब भोग में त्याग आ जाएगा तो अर्थ में निर्लोभता आ जाएगी, धन में निर्लोभता आ जाएगी, ईश्वर दृष्टि का जो फल है। और जब ये हमारे को तीन चीज़ें, तीन पुरुषार्थ हमारे को बतलाए, तो चौथा कर्म का बतलाया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कि जब भोग में त्याग अर्थ में निर्लोभता सर्वत्र ईश्वर दृष्टि होगी तो फिर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से वो ही कर्म करेगा जिसके अंदर भोग में त्याग है और धन में निर्लोभ है, सर्वत्र ईश्वर दृष्टि है, तीन चीज़ें जिसके पास है वो फिर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा, लोभ से नहीं। कर्तव्य का अर्थ ना जो करने योग्य है, कर्तव्य का अर्थ क्या है, जो करने योग्य है। तो योग्य काम हमारे को करना चाहिए। योग्य का अर्थ क्या हुआ, जो विहित कर्म है, जो महापुरुषों ने वेद ने बतलाए हैं वो कर्म। कर्तव्य बुद्धि का अर्थ भी तो समझना चाहिए। कर्तव्य बुद्धि एक शब्द है, अर्थ तो उसका, कर्तव्य बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि मतलब वृत्ति हमारी कर्तव्य होनी चाहिए, कर्तव्य योग्य होनी चाहिए। करने के योग्य जो कर्म हैं वो हमारे को बुद्धि में उनका चिंतन करके तब करना चाहिए। इसका नाम है कर्तव्य बुद्धि। तो करने के योग्य आप उसको सब मालूम है कि हमारे को ग्रंथों ने महापुरुषों ने बतलाया है कि ऐसा कर्म करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ये आपको नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, ठगी धोखा छल नहीं करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, दया करनी चाहिए, ये करने और ना करने योग्य बतलाया ना सब कुछ। तो कर्तव्य बुद्धि का यही अर्थ है कि जो करने योग्य हैं उसको करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करे, जो नहीं करने योग्य उसको नहीं। और नहीं करने योग्य आदमी कब करता है, जो करने योग्य उसको कब त्यागता है, बात उसमें से यह निकलनी है। अभी आगे बढ़ने को मन करता है लेकिन फिर पीछे चले जाते हैं। कर्म की जो फिलॉसफी है ना गहरी बहुत है। जब आदमी करने योग्य कर्म का त्याग करता है, जो नहीं करने योग्य उसको करता है, तो क्या होता है उसका, भोग में त्याग नहीं है, भोग में उसको लोभ है, धन का लोभ है और भोग की आसक्ति है, और ईश्वर दर्शन नहीं हुए उसको, ईश्वर बुद्धि नहीं बनी उसकी, इसलिए वो करता है। उसमें प्रमाद है, उसके आलस है, दो चीज़ें हैं उसके अंदर, आलस है प्रमाद है। जब आलस आता है तो जो कर्म करने योग्य होता है ना उसको भी करने का मन नहीं करता। आलस का क्या, आलस की निशानी क्या है, हमारे को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का विधान है, हम जानते हैं, मन करता है उठने को लेकिन आलस ने पकड़ लिया। तो करने योग्य है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना हमारे लिए योग्य है, हमारे को मालूम भी है, लेकिन आलस ने पकड़ लिया तो नहीं उठे। तो आलस को हटाना है, और दूसरा प्रमाद। आलस में और प्रमाद में अंतर है ना, प्रमादो ही मृत्यु ऐसा भी कहते हैं, प्रमाद वही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद भी एक मृत्यु है। प्रमाद मर्थ है भूल जाना। कर्तव्य कर्म जो है उसको नहीं करते, जो नहीं करने योग्य उसको करते, यही तो प्रमाद है। जो करना चाहिए था उसको नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था उसको किया, तो ये प्रमाद है, ये आलस नहीं है। आलस का अर्थ है जो भी करना चाहते थे उसको करने को मन ने पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो कर्म का सिद्धांत नहीं समझ में आया। कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। जो ऐसी बुद्धि से कर्म करता है उसके लिए कहा था ना कर्म लिप्यते नरे। यदि इस प्रकार कर्तव्य बुद्धि से कर्म करोगे तो ठीक है, और आपके लिए कोई उपाय नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, जो इस प्रकार से कर्म करता है ना कर्तव्य बुद्धि से, उसको कर्म कभी लिपाए मानी आबद्ध नहीं करता, बांधता नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, हे नरे, जहाँ पर नार शब्द कहा, नार शब्द भी बहुत गहरा है, उसको भी समझने में समय लगता है। एक एक शब्द को समझ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा सुनना नहीं पड़ेगा। न कर्म लिप्यते नरे, कहते हैं भी हे नर, तेरे को कर्म आबद्ध नहीं करेगा, बांधेगा नहीं। यदि तू कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा तो 100 साल तक भी करता रहो तब भी तेरे को बांधेगा नहीं। भाव जब तक तेरी आयु है तब तक कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर, तो तेरे को कर्म बांधेगा नहीं। क्योंकि किसको नहीं बांधता कर्म, नर को नहीं बांधता। नर शब्द कहाँ है इसमें, ना कर्म लिप्यते नरे, जहाँ पर नर शब्द कहा है, बात तो यहाँ पर विचारने योग्य है कि नर हैं हम, यदि नर हैं तो फिर नहीं बांधेगा कर्म। कहते नर को नहीं बांधता, बाकी को बांध लेता है, तो नर कौन है। नरी धातु से नर शब्द बना है, नरी धातु से, उसका अर्थ क्या होता है, चलने वाला, चलाने वाला। इसका अर्थ था चलाना, नरी धातु का अर्थ है चलना, चलाना। तो चलाने वाले को कहते हैं नरी, नरी, नरी से नर बना है, उसी से नार बना है, उसी से नेता बना है, उसी से नेत्र बना है, उसी से नियति बना है, एक ही धातु है चलाना। नार भी उसी से बना, नार भी उसी से बना, नेता भी उसी से बना, नेत्र भी उसी से। नेत्र का काम क्या है? चलाना। नेत्र से क्या होता है? चलते हैं ना हम। नेता का अर्थ क्या है? जो आगे आगे चलता है उसको कहते हैं ना हम नेता। भाव जो चलाता है लोगों को, आगे ला के चलता है लोगों को, पीछे चलाता है ना अपने, उसको नेता बोलते हैं। नेत्र का भी यही काम है, नेत्र बताएगा तब हम चलेंगे। तो नर भी उसी को बोलते हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पर अपनी विभूति बतलाई ना 10वें अध्याय में, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नरों में जो नरत्व है ना वो मैं हूँ। गीता में कहते हैं भगवान कि नरों में जो नरत्व है ना वो मैं हूँ, पुरुषों में जो पुरुषत्व है ना वो मैं हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ नर शब्द आता है वहाँ भगवान का अर्थ है उसमें, भगवान। कई बार ऐसा भी होता है कि नर से तो केवल नर मतलब पुरुष आते हैं, स्त्री तो नहीं आती है, ऐसा भी हो जाता है प्रश्न कि नर का मतलब नर दोनों के लिए। भाव नर का शब्द है आत्मा, प्रभु परमात्मा या आत्मा। तो नरत्व कहते मैं हूँ, पुरुषत्व तो मैं हूँ, जहाँ पुरुष आता है वहाँ पुरुष का अर्थ परमात्मा। तो कहते हैं आप में यदि नरत्व है तो फिर आप नर हैं। तो हमारे में नरत्व है जे हमने चिंतन करना, यदि हम नर होते तो कर्म नहीं बाधता हमारे को। नर का मतलब आत्मा का चिंतन किए, चिंतन करके तो आत्मा की अनुभूति किए होते तब हम नर होते। तो जो ऐसा नर हो जाता है जिसने आत्मा को चिंतन किया है, प्रभु के साथ ब्रह्म के साथ अभेद हुआ, नरत्व जिसमें आ गया, पुरुषत्व जिसमें आ गया, मनुष्यत्व जब आता है तो मनुष्य बनता है। तो नरत्व का मतलब जो नर है, नर मतलब भगवान है, प्रभु है। तो जो ऐसा तत्व वेता पुरुष है, ज्ञानी हो जाता है ना, उसको कर्तव्य बुद्धि से कर्म कर भी रहा है तो उसको कर्म नहीं बांधता, न कर्म लिप्यते नरे, उसको नहीं बांधेगा कर्म, दूसरे को बांधता है। ये हमने चिंतन किया था अभी, इसका और भी चिंतन बहुत कर सकते हैं, लेकिन दो श्लोकों में ये हमारे को सिद्धांत मिला कि सर्वत्र ईश्वर दर्शन, एक बात। दूसरी बात भोग में त्याग, तीसरी बात धन में निर्लोभता, और चौथी बात कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना चाहिए। जब ये होगा तो न कर्म लिप्यते नरे, आपको पूरी आयु भी कर्म करने पर कर्म बाधेगा नहीं। तो एक बात इससे और भी निकलती है कि अकर्मण्यता जो है भगवान को, वेद को स्वीकार नहीं है। जो नहीं समझता, कर्तव्य बुद्धि से कर्म नहीं करता, वो जड़ वृत्ति पूर्वक त्याग कर देता है, उसमें आलस रहेगा, प्रमाद रहेगा, तो कहेगा नहीं ये काम हम नहीं करेंगे, इसलिए हमने ये काम छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? ये थोड़ी कि उसको ज्ञान हो गया कि मेरे को नहीं करना चाहिए, या तो आलस से छोड़ दिया या प्रमाद से छोड़ दिया। तो कहेंगे कि नहीं हम नहीं करते कभी भी ये काम, क्यों नहीं करते? या तो उसको करने में असमर्थ हैं तब नहीं करते। कौन सा काम हम दुनिया में छोड़ देते हैं जिसको हम करने में असमर्थ हैं? दूसरा काम कौन छोड़ता है? जहाँ जिसकी समर्थ है वहाँ तक वो चाहता है, जहाँ उसको लगता कि जहाँ हमारा प्रवेश नहीं होगा वहाँ कहते हैं छोड़ो क्या करना। फिर कोई पूछेगा तो कहेंगे नहीं हमने वैसे छोड़ दिया, वैसे नहीं छोड़ा है, जड़ता वृत्ति पूर्वक छोड़ा। जड़ है, जड़ में हमारी, जड़ मतलब विषयों में हम असक्त हैं, आत्मक चिंतन नहीं है हमारे अंदर, इसलिए छोड़ दिया। तो जब इस प्रकार कर्म करेंगे तो आपको कर्म बाधेगा नहीं। उसके बाद जो तीसरा श्लोक है तो अभी असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनोजनाः, इसकी विचार अभी बाद में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और सतगुरु भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। हर हर महा